पृष्ठ संख्या 292 अध्याय 15 इतिहास में व्यक्ति की भूमिका रोल ऑफ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, परंतु इतिहास में सभी मनुष्यों के कार्यों का उल्लेख नहीं होता है, इसमें मात्र महापुरुषों के कार्यों का विवरण मिलता है। इतिहास में युग पुरुष तथा महापुरुष किसे कहते हैं? हिगेल का अभिमत है कि किसी युग का महापुरुष वह व्यक्ति होता है जो उस युग की आकांक्षाओं को शब्द दे सके और युग को बता सके कि युग की आकांक्षाएं क्या हैं तथा उन आकांक्षाओं को कार्यान्वित कर मूर्त रूप दे सके। वह जो कुछ कहता है वह उसके युग की आत्मा और सार तत्व होता है। वह अपने युग को मूर्त रूप देता है। युग पुरुष का जीवन सरिता के उद्गम स्रोत के समान होता है, जो आरंभ में लघु और छोटा होता है, परंतु आगे चलकर अन्य नदियों का सहयोग पाकर अंत में सागर में पहुंचते पहुंचते असीम और अनंत हो जाता है। इस प्रकार युग की नाड़ी पहचानने वाला व्यक्ति ही महापुरुष हो सकता है। समसामयिक समाज के आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने वाले व्यक्तियों ने समाज का नेतृत्व किया है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू ने समसामयिक समाज का नेतृत्व करके युग पुरुष का स्थान प्राप्त किया है। महासमुद्र रूपी जनमानस का सहयोग प्राप्त करने के पश्चात उनका व्यक्तित्व असीम और अनंत हो गया। युग पुरुष अति विशिष्ट व्यक्ति होता है। अब यह एक जटिल प्रश्न है कि क्या इतिहास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अथवा नहीं। एक, महापुरुष सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी। इतिहास का स्वरूप गतिशील होता है। अतीत के गर्भ में कुछ ऐसे अणु तत्व होते हैं जो वर्तमान तथा भविष्य में गतिशीलता को बढ़ाते रहते हैं। इतिहास की गतिशीलता की वृद्धि में महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही इतिहास में व्यक्तिवादी सिद्धांत के उद्भव का कारण बना। 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहास लेखन का अभिप्राय महापुरुषों के जीवन कथाओं पर प्रकाश डालना था। इतिहास में व्यक्तिवाद का उद्भव स्रोत पुनर्जागरण माना जाता है। इसके पूर्व व्यक्ति अपने को समाज का अभिन्न अंग मानता था, परंतु पुनर्जागरण काल से वह आध्यात्मिक जगत में व्यक्तिवादी बन गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने तो व्यक्तिवादी सिद्धांत की पुष्टि कर दी, क्योंकि व्यक्तिवादी योग्यता तथा क्षमता के आधार पर ही पूंजीवाद का विकास हुआ। इसी युग में ग्रोथ द्वारा लिखित यूनान का इतिहास तथा मामसेन रचित रोम का इतिहास इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। इस प्रकार अनेक इतिहासकारों ने महारानी एन, जॉर्ज तृतीय तथा नेपोलियन बोनापार्ट पर अनेक पुस्तकों की रचना की। इस प्रकार इतिहास की गतिशीलता ने महापुरुषों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया है। प्राय सभी इतिहासकार उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक्टन ने लिखा है कि इतिहास को अतीत के अनावश्यक प्रभावों का ही उद्धारक नहीं होना चाहिए, अपितु अपने युग के निरंकुश वातावरण के अनावश्यक प्रभावों जिसमें हम सांस लेते हैं उसका भी उद्धारक होना चाहिए। सुश्री वेजवुड ने भी इतिहास में महापुरुषों की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि वर्गों तथा जातियों की अपेक्षा व्यक्ति के रूप में मनुष्यों का व्यवहार मुझे अधिक आनंददायक लगता है। यह पुस्तक एक प्रयास है कि महापुरुषों ने कैसे परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया तथा क्यों अपने अनुभव मूलक मूल्यांकनों से उन्हें मूर्त रूप प्रदान किया। व्यक्तिवादी अवधारणा से प्रेरित डॉक्टर ए एल राउस ने एलिजाबेथ युग की मान्यताओं के लिए स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम को दोषी बनाया। जी एम यंग ने विक्टोरियन इंग्लैंड तथा सर ड्यूशर ने स्टालिन तथा लेनिन की जीवन कथा लिखकर इतिहास में व्यक्ति की भूमिका को पराकाष्ठा पर पहुंचाया। कार्ल मार्क्स ने तो स्पष्ट लिखा है कि इतिहास कुछ नहीं करता है, इसके पास अतुल संपत्ति नहीं है और यह युद्ध भी नहीं करता। सब कुछ जीवित मनुष्य ही करते हैं, क्योंकि उसके पास अतुल संपत्ति है और वही युद्ध भी करता है। कार्लाइल ने भी इतिहास को महापुरुषों की जीवन कथा के रूप में मान्यता देकर महापुरुषों की भूमिका को स्वीकार किया है। प्रोफेसर नेमियर एक रूढ़िवादी विचार के विद्वान थे। उन्होंने विघ इतिहासकारों तथा उदारवादियों पर कठोर प्रहार किया है। उन्होंने इतिहास में महापुरुषों की भूमिका को अस्वीकार किया तथा जनसामान्य की भूमिका को मान्यता प्रदान की है। क्योंकि प्रायः महापुरुष सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत को अपने व्यक्तिगत विचारों से अतिरंजित करने का प्रयास करता है। उदारवादी इतिहासकारों ने प्रोफेसर नेमियर की कटु आलोचना करते हुए कहा है, जैसे डार्विन ने विश्व को मस्तिष्क से अलग करने का प्रयास किया है, उसी तरह नेमियर इतिहास को मस्तिष्क से अलग करने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर नेमियर के प्रति इस प्रकार की आलोचना उस महान विचारक इतिहासकार के प्रति अन्याय है। यह तथ्य सत्य है कि उन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत के ऐतिहासिक तथ्यों तथा महापुरुषों को अतिरंजित करने का तीव्र विरोध किया है। उनकी अवधारणा थी कि अतीत को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रोफेसर बटलफील्ड ने भी वर्तमान के संदर्भ में अतीत के अध्ययन को अनैतिहासिक कहा है। प्रोफेसर ट्रेवन रोपर ने लिटन स्ट्रैची को एक पत्र लिखा था कि ऐतिहासिक समस्याएं सदैव मात्र व्यक्तिगत व्यवहार की समस्याएं बनी रहेंगी। आइजैक ड्यूसर ने लेलिन तथा ट्रॉट्स्की की जीवन कथा लिखी, परंतु लेलिन की सफलता में लाखों मनुष्यों ने योगदान को भी स्वीकार किया है। परिपक्व परिस्थितियों का नेतृत्व करके लेलिन अपनी सफलताओं के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। जनमानस ही महापुरुषों की शक्ति होती है और वही युग पुरुष का यथोचित दिशा निर्देशन करता है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता मात्र युग पुरुष महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा गोपाल कृष्ण गोखले आदि के व्यक्तिगत परिश्रम का फल नहीं है, अपितु असंख्य जनता के सहयोग का परिणाम है। महापुरुष का नेतृत्व मानवीय प्रयासों को सफल बनाता है। टी एस इलियट ने अपार जनसमूह को निर्वैयक्तिक शक्तियां कहा है। उसी को क्लैरेंडन ने महापुरुष के अभाव में गंदा बेनामी जनसमूह कहा है। नेतृत्वहीन जनमानस भेड़ बकरियों की भांति बिखरी हुई शक्ति है। महापुरुष इन बिखरी हुई शक्तियों को श्रृंखलाबद्ध करके सुनियोजित योजना के अनुसार क्रियान्वित करता है। परिणाम स्वरूप वह जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति में सफल होकर युग पुरुष बन जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एजे पी टेलर ने विद्वानों को आमंत्रित किया तथा उन्हें यूरोप के महापुरुषों के जीवन कथा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधुनिक यूरोप का इतिहास नेपोलियन बिस्मार्क तथा लेनिन के संदर्भ में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यूरोप इतिहास की गति को इन महापुरुषों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। महापुरुष एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। गिबन का भी अभिमत है कि महापुरुषों के लिए उपयुक्त अवसर की आवश्यकता होती है, जो इसका लाभ उठाकर युग की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। यदि इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्रॉमवेल तथा रेट्स की अद्भुत प्रतिभा को लोप हो जाएगा। इतिहास में महापुरुष समसामयिक सामाजिक चेतना को जागृत करने वाला व्यक्ति होता है। निसंदेह महापुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता है तथा उपयुक्त समय पर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुकूल परिस्थितियों तथा मानवीय शक्ति को नवीन दिशा प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप मानवीय शक्ति का नेतृत्व करने वाला महापुरुष से युग पुरुष बन जाता है। नेपोलियन बिस्मार्क तथा लेनिन की ख्याति का यही प्रमुख कारण था। दक्षिणी अफ्रीका में बहुसंख्यक अश्वेतों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नेल्सन मंडेला के त्याग को क्या इतिहास भूल सकता है। रूस के राष्ट्रपति गोरबाचेव ने रूस तथा पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों की नारी को उपयुक्त समय पर पहचान कर सुधारवादी प्रवृत्तियों का नेतृत्व किया। पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन में इतिहास सदैव राष्ट्रपति गोरबाचेव के योगदान को स्मरण रखेगा। युग की नारी को उपयुक्त समय पर पहचानने वाले गोरबाचेव की गणना युग पुरुष के रूप में अवश्य की जाएगी। अतः स्पष्ट है कि महापुरुष के अभाव में परिस्थितियां तथा मानवीय ऊर्जा उसी प्रकार विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा के अभाव में नवोदित पौधे। इतिहास में युग पुरुष की भूमिका असंदिग्ध है, फिर भी विद्वानों के बीच यह विवादग्रस्त विषय बना हुआ है। इस संबंध में परस्पर विरोधी दो अवधारणाएं हैं। एक, इतिहास में महापुरुष की भूमिका नहीं होती है, दो इतिहास में महापुरुषों की भूमिका होती है। इन दोनों अवधारणाओं की विश्लेषणात्मक व्याख्या आवश्यक है। दो इतिहास में व्यक्ति की भूमिका नहीं, इतिहास में व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रारंभ यूरोप में पुनर्जागरण काल से माना जाता है। उसके पहले व्यक्ति अपने को जाति, परिवार तथा निगम का सदस्य मानता था। कोई भी व्यक्ति परिवार तथा जाति में सर्वश्रेष्ठ बनने में गर्व की अनुभूति करता था, परंतु पुनर्जागरण काल में उसने अपने को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पहचाना। परंतु वर्कहार्ट का यह विचार तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि पुनर्जागरण काल के पहले भारतवर्ष में महात्मा गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने जनमानस का नेतृत्व किया था। आध्यात्मिक आंदोलन का नेतृत्व करके व्यक्तिवाद की भूमिका अदा की थी। व्यक्तिवाद की इस अवधारणा के साथ युग पुरुष अपनी उपलब्धियों के आधार पर समसामयिक समाज तथा उसके पश्चात इतिहास में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। इतिहास में उसकी भूमिका विवाद का एक विषय बनी हुई है। 16 अप्रैल 1869 को उत्तरी जर्मनी के रेस्टैग संसद में भाषण देते हुए लौह तथा रक्त पिपासु नीति के प्रबल समर्थक चांसलर बिस्मार्क ने कहा था, हम लोग न तो अतीत के इतिहास की उपेक्षा कर सकते हैं और न तो भविष्य का निर्माण। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा जो अपनी घड़ी की सुई को इस उद्देश्य से बढ़ाना चाहते हैं कि उसकी गति से समय की अवधि को भी बढ़ा सकेंगे। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि वह इतिहास निर्माता है। मैं आप लोगों के सहयोग से भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। हम लोग संपूर्ण विश्व का प्रतिरोध कर सकते हैं, परंतु इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। जब तक इसका निर्माण हो रहा है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। दीपक के ताप से हम फल को नहीं पका सकते हैं, परंतु पकने के पहले हम फल को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार इसके स्वयमेव विकास को रोक कर नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जर्मन चांसलर तथा विश्व का महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि इतिहास में व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। फ्रांस प्रशा युद्ध के समय अपने अभिभाषण में उसने पुनः कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना को निर्मित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे उस घटना के स्वाभाविक स्वरूप के अनुरूप अपने को ढालना चाहिए तथा उसके परिपक्व होने की स्थिति तक अपने को नियंत्रित करना चाहिए। प्लेखनो ने स्पष्ट लिखा है कि शक्ति और सत्ता के उच्च शिखर पर आसीन होकर भी बिस्मार्क अपने इच्छानुसार जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तित करने में असफल रहा है। प्रायः ऐतिहासिक परिस्थितियां शक्तिशाली एवं सत्ता संपन्न व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं। बिस्मार्क जैसा व्यक्ति जो जर्मनी की संपूर्ण समस्याओं का समाधान लौह तथा रक्त पिपासु नीति के माध्यम से ढूंढना चाहता था, परिस्थितियों के समक्ष नतमस्तक होकर शांति का अद्वितीय पुजारी बन गया। 1871 के पश्चात युद्ध में सदैव आनंद विभोर होने वाला व्यक्ति शांति का अद्वितीय पुजारी ही नहीं बना, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों से उसका हृदय कांप उठता था। बिस्मार्क का उपर्युक्त कथन भारतीय तथा यूनानी युगचक्रवादी इतिहास अवधारणा की पुष्टि करता है कि इतिहास की गति पूर्व नियोजित एवं पूर्वांकित है। मनुष्य इतिहास की गति अथवा प्रवाह को विपरीत दिशा में नहीं बदल सकता। यह तथ्य सर ईसाया बर्लिन के ऐतिहासिक अवसंभाविता, हीगेल के बुद्धि की चतुराई के सिद्धांतों की भी पुष्टि करता है। कार्ल मार्क्स ने भी ऐतिहासिक अवसंभाविता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर बिस्मार्क ने इतिहास की गति को स्वीकार किया है। इतिहास के प्रवाह में मनुष्य उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसे ऐतिहासिक घटनाएं प्रदान करती हैं। बिस्मार्क प्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध करना चाहता था कि व्यक्ति इतिहास में कभी शक्तिशाली न होकर ऐतिहासिक घटनाओं के समक्ष सदैव नतमस्तक हुआ है। इतिहास की गति संपूर्ण मानव समाज को प्रभावित करती है। इतिहास की गति को रोकने में व्यक्ति सदैव असफल रहा है। 1789, 1830, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांतियां तथा 1905 और 1917 की रूसी राज्य क्रांतियां इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि फ्रांस और रूस के शासकों को इतिहास गति का शिकार होना पड़ा। ईरान के शाह को अपार धन और शक्ति के बावजूद घटनाओं के समक्ष नतमस्तक होकर स्वदेश का परित्याग करना पड़ा। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि प्रायः निरंकुश शासकों को भी घटनाओं के समक्ष झुकना पड़ा है। इतिहास में व्यक्ति प्रधान नहीं होता, बल्कि घटनाक्रमों की प्रधानता होती है। यह सत्य है कि व्यक्ति ने समाज को प्रभावित किया है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इतिहास में इसकी निर्णायक भूमिका रही है। कोई भी व्यक्ति किसी घटना को प्रभावित कर सकता है, परंतु वह इतिहास के प्रभाव को बदलने में सदैव असमर्थ रहा है। 1971-72 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का अभ्युदय घटनाओं का परिणाम था। सैनिक शक्ति के प्रयोग के बावजूद पाकिस्तान की सरकार इसे रोकने में विफल रही। इतिहास की गति अन्य शक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। प्रायः गति के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति महापुरुष, युग पुरुष हो जाते हैं। ऐतिहासिक आवश्यकता सामान्य अथवा विशेष कारणों का परिणाम होती है। इतिहास की गति से टकराकर कोई युग पुरुष नहीं हुआ है। प्रायः मनुष्यों के कार्यों के ऐसे परिणाम होते हैं जिनकी कभी भी कल्पना भी नहीं करते हैं। कार्यों के विपरीत इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि इतिहास में व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। ईसाइयों का विश्वास है कि व्यक्ति सचेतन रूप में अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करता है, परंतु वह ईश्वरीय योजना की पूर्ति का साधन होता है। मेंडेविले का विरोधाभासपूर्ण उद्गार व्यक्तिगत दोष सार्वजनिक गुण इस अवधारणा का पूर्वक कथन है। एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ, हीगल की बुद्धि की चतुराई आदि शक्तियां मानवीय प्रयास को विफल करने में सहायक हुई हैं। कार्ल मार्क्स तथा टॉलस्टॉय का यही अभिप्राय है। बटरफील्ड के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का कुछ ऐसा चरित्र होता है कि वे इतिहास की धारा को ऐसी दिशा में मोड़ देती हैं, जिसकी किसी व्यक्ति ने कामना तक नहीं की थी। 2 विश्व युद्धों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि अधिकांश लोग युद्ध प्रिय थे। 1930 के भयंकर आर्थिक संकट को कोई भी नहीं चाहता था। इस तरह के विचार प्रकट करने वाले विद्वानों की एक लंबी सूची है। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहास में व्यक्ति की भूमिका नगण्य होती है। व्यक्ति इतिहास प्रवाह में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज तथा परिस्थितियों की उपज होता है। रिचर्ड द्वितीय तथा कैथरीन महान शक्तिशाली सामाजिक शक्तियों का उतना ही प्रतिनिधित्व करते हैं जितना वॉट टेलर तथा युगाचेव दासप्रथा के कटु आलोचक तथा विरोधी नेता थे। लुई 16वें, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी की विफलता का एकमात्र कारण इतिहास गति से टकराव था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक तथा औरंगजेब की असफलताओं का प्रमुख कारण इतिहास गति के विपरीत चलना था। नदी प्रवाह के विपरीत केवल सर्प ही चल सकता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। इतिहास गति के विपरीत चलने वाला कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य की गति को अकबर जैसा प्रतिभावान कुशल शासक भी नहीं रोक सकता था। इस प्रकार इतिहास में व्यक्ति की भूमिका नगण्य होती है। इतिहास संबंधी भारतीय अवधारणा में मनुष्य की भूमिका के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय मनुष्यों की अटूट आस्था युग चक्रवादी अवधारणा में रहा है। कृत, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में मानवीय गुणों तथा पुरुषार्थ का उत्तरोत्तर ह्रास तथा ह्रास इस तथ्य का प्रमाण है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से न तो युग चक्र परिवर्तन को अवरुद्ध कर सकता है और न इतिहास की गति को रोक सकता है। युग चक्र परिवर्तन के प्रवाह अनुसार मानवीय कार्य अपरिहार्य है। भारतीय अवधारणा में एक सर्वव्यापी अवयवीय विराट पुरुष के माध्यम से प्राकृतिक तथा सामाजिक तत्वों का समन्वय किया गया है। विराट पुरुष सूर्य से चमकता है, बादलों में गरजता है, समीर में संचरण करता है, झंझावातों में स्वयमेव प्रवाहित होता है। वही जन्म मृत्यु तथा काल स्वरूप है। उसके इंगित पर योद्धा युद्ध में लड़ते तथा एक दूसरे का संहार करते हैं। व्यक्ति उसकी इच्छा का साधन तथा निमित्त मात्र होता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रूप में कहा था कि मनुष्य मात्र ईश्वरीय इच्छा का साधन है। कर्म सिद्धांत में उसकी व्यक्तिगत इच्छा तथा आकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं। इतिहास में प्रवृत्तियों की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। मनुष्य की भूमिका नगण्य होती है। युग चक्रवादी अवधारणा के अनुसार धर्म का उत्थान तथा पराभव होता है। मानवीय सक्रियता, सुषुप्तता तथा जागृति अवस्थाएं समसामयिक प्रवृत्तियों द्वारा सतत द्वारा सतत नियंत्रित होती रहती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी व्यापक व्याख्या की गई है। अतः युग परिवर्तन में मनुष्यों की क्रिया शक्ति प्रच्छन्न रहती है। इस प्रकार इस यांत्रिक प्रक्रिया का मूल रूप नैतिक है, इसलिए विराट पुरुष के दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। सांख्य दर्शन में विकास प्रक्रिया एक निश्चित नियम के अधीन है, जिसका उल्लंघन संभव नहीं है। यह परिणाम क्रम नियम है। आजीविका दर्शन ने परिणामवाद को पूर्णतः यांत्रिक, अटल तथा अमानवीय बना दिया है। इसके अनुसार समस्त प्रकृति नियति, संगति तथा भाव के नियंत्रण में अग्रसर होती है। नियति, संगति, भाव, प्रवीणता। नियति जीवन की अटल गति है, संगति आकस्मिकता की क्रिया है एवं भाव प्रकृति का निजी स्वरूप है। टीकाकार गुणरत्न का अभिमत है कि कांटों की तीव्रता तथा पशु पक्षियों की विचित्रता को कौन बनाता है, यह सब स्वभाव जन्य है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इच्छा अनुसार कार्य करती है। इतिहास में मानवीय भूमिका की नगण्यता को स्पष्ट रूप से अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। व्यक्ति समष्टि के अधीन है। प्रवृत्तियों की तुलना में व्यक्ति का कोई महत्व तथा अस्तित्व नहीं होता है। इतिहास में महापुरुष भी ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के निमित्त मात्र होते हैं। अरब जगत के महान इतिहासकार इब्न खल्दून की इतिहास संबंधी अवयवी व्याख्या फिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। मानव जीवन चक्र बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में चरणबद्ध है। मानव जीवन की ये प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। ठीक उसी प्रकार इतिहास में राजवंशों की चक्रवादी अवधारणा के अनुसार राजवंश का प्रथम काल स्थापना तथा संगठन का होता है, द्वितीय काल विकास, साम्राज्य विस्तार तथा धन संग्रह का होता है, तृतीय काल विलासिता, आनंदमय जीवन, ऐश्वर्य भोग का होता है, चतुर्थ भाग भोग विलास, ऐश्वर्य सुख, राजवंश को पतनोन्मुख बनाकर उस राजवंश का अंत करके दूसरे राजवंश का मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास में इस कालक्रम की निर्णायक भूमिका रहती है। मुगल कालीन इतिहास में बाबर तथा हुमायूं का काल स्थापना एवं संगठन, अकबर का काल मुगल साम्राज्य का विकास, साम्राज्य विस्तार तथा चरमोत्कर्ष काल था। मुगल साम्राज्य के द्वितीय चरण में जहांगीर तथा शाहजहां का युग भोग विलास का युग माना जाता है। चतुर्थ चरण में औरंगजेब की गतिविधियों ने मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वृद्धावस्था में क्षीण इंद्रियां मानव मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करती है। औषधियों से जीवन को कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु नियति मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि औरंगजेब के शासन काल में महान सम्राट अकबर को शासन करने का अवसर मिला होता तो पतन की नियति को वह भी टालने में सफल नहीं होता, क्योंकि पतन तो प्राकृतिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप अवश्य संभावी था। हीगेल ने प्रवृत्ति अथवा इतिहास प्रवाह को युग की आत्मा कहा है। प्रत्येक युग में मनुष्यों के क्रियाकलाप तथा गतिविधियां युगात्मा द्वारा नियंत्रित होती है। दास प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास, निरंकुश राजतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र, क्रांति युग, प्रजातंत्र युग, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद युगात्मा के अधीन नियंत्रित होती रही है। इतिहास प्रवाह अथवा युगात्मा के विपरीत चलने वाला कोई भी शक्तिशाली महापुरुष सफल नहीं हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट, आसिया के चांसलर मेटरनिक, हिटलर, मुसोलिनी की पतन गाथाएं इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि युगात्मा अथवा इतिहास प्रवाह से टकराकर शक्तिशाली महापुरुष भी पतन के गर्त में विलीन हो गया। यदि मोहम्मद तुगलक की बुद्धिमत्ता पूर्ण उच्च कोटि की योजनाएं सफल हो गई होती तो परिणाम स्वरूप उसकी गणना मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के महान शासकों में की जाती। मुगल कालीन इतिहास में अकबर महान की उपलब्धियों का एकमात्र कारण यह था कि उसमें युग की नाड़ी पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। इस प्रकार इब्न खल्दून तथा महान दार्शनिक हीगेल ने स्पष्ट रूप से इतिहास में मनुष्य की भूमिका को स्वीकार कर दिया। भूमिका को अस्वीकार कर दिया है। इब्न खलदून का अभिमत है कि शरीरियों की तरह साम्राज्य का भी उत्थान पतन तथा विनाश प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो निश्चित और अटल है। इतिहास समाज का जीव विज्ञान है। इसका कार्य मृत समाज का वर्गीकरण, विश्लेषण, परीक्षण, उनके शारीरिक निर्माण एवं बुद्धि की प्रक्रिया का अन्वेषण, अनुसंधान तथा विलय की प्रवृत्तियों संबंधी नियमों का निर्धारण होता है। समाज एवं साम्राज्यों संबंधी इब्न खलदून की यह अवधारणा आधुनिक बायोलॉजिकल स्कूल के प्रख्यात विद्वान स्पेंगलर, स्पेंसर, शापेल, बोमर्स की श्रेणी में लाता है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में मनुष्य की कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती है, अपितु शक्तिशाली युग पुरुष भी प्रवृत्तियों, इतिहास प्रवाह तथा युगात्मा द्वारा नियंत्रित होकर समसामयिक प्रक्रिया में सहभागी बनकर तथा नियंत्रित होकर गतिशीलता प्रदान करता है। 3. इतिहास में व्यक्ति की भूमिका, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री। पाश्चात्य विद्वान हेनरी पीरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, परंतु समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण इतिहास में नहीं होता है। प्रायः धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक आंदोलनों का उल्लेख इतिहास में होता है। प्रोफेसर ए एल बॉसम ने स्पष्ट लिखा है कि भारतीय मनुष्यों ने पुरुषार्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पुरुषार्थ ही इतिहास में साधन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। प्राचीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत का क्रियान्वयन व्यक्तिवादी था। पुरुषार्थ के माध्यम से सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। एक परिवार माता पिता, पुत्र, बहन, पौत्र एवं पौत्री मोक्ष प्राप्ति के लिए सतत क्रियाशील रहते थे। उनके इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण में परिवार एवं समाज का कल्याण गौड़ था। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात उत्तराधिकार संबंधी निश्चित नियम तथा परंपरा के अभाव में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम व्यक्ति की राज सिंहासन का अधिकारी होगा के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई थी, परंतु योग्यता का अभिप्राय शैक्षिक तथा बौद्धिक योग्यता नहीं है, अपितु तलवार के बल पर सत्ता प्राप्त करना तथा उसकी रक्षा करना था। अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक, बहलोदी लोदी, बाबर, शेरशाह, इस्लाम शाह तथा औरंगजेब ने तलवार के बल से ही सिंहासन प्राप्त कर उसकी रक्षा की थी। उनकी उपलब्धियों में पुरुषार्थ की निर्णायक भूमिका रही है। भारतीय मनीषियों तथा चिंतकों ने पुरुषार्थ के साथ कर्म के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस प्रकार कर्म का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। कर्म का फल विराट पुरुष ईश्वर तथा नियति को प्राप्त है, क्योंकि वही सर्वत्र व्याप्त है, वही जन्म मृत्यु तथा काल है। उसके इंगित पर योद्धा युद्ध में संघर्ष करते हैं, एक दूसरे का संहार करते हैं। व्यक्ति उस विराट पुरुष की इच्छा का साधन तथा निमित्त मात्र होता है, परंतु उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए मनुष्य को कर्म करने का अधिकार देते हुए इतिहास में मनुष्य की भूमिका निभाने का भी उपदेश दिया था। इस प्रकार अर्जुन को कर्म करने का पूर्ण अधिकार दिया है। उपरोक्त तथ्य से पाश्चात्य विद्वान हेनरी पीरेन की उस कथोक्ति की स्वयमेव पुष्टि हो जाती है कि इतिहास समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इस तथ्य की स्वीकारोक्ति के पश्चात एक स्वाभाविक विचारणीय प्रश्न उठता है कि क्या समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों को इतिहास में स्थान देना संभव है। नकारात्मक उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प की संभावना ही नहीं बनती है। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहासकारों के लिए संभव है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले करोड़ों व्यक्तियों की भूमिका का वर्णन इतिहास में करें? ऐसी स्थिति में इतिहास एक टेलीफोन निर्देशिका बन जाएगा। इतिहास का द्वार मात्र उन्हीं महापुरुषों के लिए खोलना चाहिए जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। स्वदेशी आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू ने विदेशी वस्त्रों को जला दिया। यह ऐतिहासिक तथ्य बनकर इतिहास का विषय हो गया, जबकि लाखों मनुष्यों ने वस्त्रों को जलाया, वह इतिहास का विषय नहीं बन सका। 1954 में प्रयाग में महाकुंभ स्नान के अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्नान इतिहास का विषय बन गया। वहीं लाखों मनुष्यों द्वारा स्नान का उल्लेख इतिहास में नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इतिहास का द्वार केवल महापुरुषों के लिए खुला रहता है। युग पुरुष की विशेषताएं। साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेट मैन। इतिहास में अनेक व्यक्तियों ने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उनकी गणना नेताओं में की जाती है। उन्हें महापुरुष अथवा युग पुरुष की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इतिहास में महापुरुष सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश इतिहासकारों की देन है। युग पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसका स्पष्ट प्रभाव समसामयिक युग पर पड़ता है। इतिहास में अनेक युगांतकारी युगों का प्रादुर्भाव हुआ है। एलिजाबेथ युग, नेपोलियन युग, बिस्मार्क युग तथा गांधी युग आदि का व्यापक विवरण पाया जाता है। बहुत समय तक नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोपीय इतिहास की घटनाओं को प्रभावित किया था। इसी प्रकार 1870 से 1890 तक यूरोप की ऐतिहासिक घटनाओं तथा गतिविधियों को जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने प्रभावित कर बिस्मार्क युग की आधारशिला तैयार की। इंग्लैंड के इतिहास में एलिजाबेथ युग की पृष्ठभूमि अंग्रेजी साहित्य के महान कवि तथा नाटककार शेक्सपियर ने तैयार की थी। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रभाव राष्ट्रव्यापी रहा। भारत की स्वतंत्रता में उनके महान योगदान के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई है। यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था, परंतु मार्टिन लूथर को महापुरुष अथवा युग पुरुष के रूप में गौरवान्वित स्थान नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार धर्म सुधार आंदोलनों तथा प्रतिक्रियावादी आंदोलन रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स में अनेक विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु उन्हें महापुरुषों तथा युग पुरुषों की श्रेणी में स्थान नहीं प्राप्त। युग पुरुष समाज का अति विशिष्ट व्यक्ति होता है। उनका जन्म किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय आंदोलन की पूर्व संध्या पर शताब्दियों बाद होता है। युग पुरुष उच्च पर्वत शिखर पर आसीन वह व्यक्ति होता है जो प्रातःकालीन सूर्य किरणों का प्रथम आभास करता है। उसके पश्चात धीरे धीरे धरातल पर सूर्य किरणें धरातल को प्रकाशित तथा जनमानस को आह्लादित करती है। इसमें भावी आंदोलन का पूर्वानुमान करने की अद्भुत क्षमता होती है। घटनाओं का पूर्वानुमान करके समसामयिक समाज की आकांक्षाओं को शब्द प्रदान कर युग को बताने में सामर्थ्यवान होता है कि युग की आकांक्षाएं क्या है। उन आकांक्षाओं को कार्यान्वित कर उन्हें मूर्त रूप देता है। युग पुरुष में समसामयिक समाज की नाड़ी पहचानने की उच्च कोटि की अद्भुत क्षमता होती है। युग पुरुष कालवाद का ज्ञाता होता है। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अपने अभिभाषण में रेस्टैग पार्लियामेंट के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि युग पुरुष को भावी घटनाओं की परिपक्वता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह घड़ी की सुई को बढ़ाकर कालगति न तो बढ़ा सकता है और घड़ी की सुई को पीछे करके काल की गति को घटा सकता है। वृक्ष के कच्चे फल को अग्निताप से नहीं पकाया जा सकता है, उसे प्राकृतिक रूप से पकने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी उसके रसास्वादन का आनंद प्राप्त होगा। युग पुरुष द्वारा युग की नाड़ी पहचानने का अभिप्राय घटनाओं की परिपक्वता से है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का एकमात्र कारण महापुरुष के कुशल नेतृत्व का अभाव तथा परिस्थितियों की अपरिपक्वता रही है। काल गति का परिचायक है। इसे सृष्टि की मौलिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। काल सूत्राधार के समान विश्व के समस्त कार्यकलाप का नियंत्रण करता है। भावों का स्थगन तथा उन्मज्जन काल का कार्य है। इस प्रकार काल वस्तु जगत का उपकरण एवं सार्वभौम प्रक्रिया है। अर्घट की भांति इसकी चक्रीय प्रक्रिया में उत्थान पतन विकास विनाश भावों और स्वरूपों का क्षण तथा लोप सन्नद्ध है। मन प्राण तथा नाम का काल के साथ अभिन्न संबंध है। पतंजलि के काल विषय व्याख्या में भूत वर्तमान तथा भविष्य सापेक्ष व्यंजनाएं हैं। वर्तमान का अस्तित्व इसलिए भी सजीव है कि जो क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह भूत है और जो पूर्ण होनी है वह भविष्य है। पदार्थ तथा मानव अस्तित्व क्षणिक एवं नाशवान है। नियति की प्रेरणा से जब परमाणु प्रकंपित होने लगते हैं तो और उनकी सुषुप्त क्रिया जागृत होने लगती है, उसमें गति आरंभ होने लगती है तथा सृष्टि का सृजनात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इस गति और क्रिया से जो स्वरूप निष्पन्न होते हैं वे काल शक्ति द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। काल शाश्वत है, इसलिए वस्तुओं का कभी अंत नहीं अपितु परिवर्तन होता है। उपरोक्त काल के विश्लेषणात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति जन्य काल गति में आरोह अवरोह तथा गतिरोध संभव नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। काल तथा इतिहास का पारस्परिक संबंध समानांतर रेखा की भांति होता है। इतिहास की गति में आरोह अवरोह तथा गतिरोध इसलिए संभव है कि यह मानवकृत है। काल गति तथा ऐतिहासिक घटना गति की नाड़ी को पहचान कर तथा ऐतिहासिक घटना की नाड़ी का पूर्वानुमान कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा समयानुकूल प्रयास से समसामयिक सामाजिक आकांक्षाओं को मूर्त रूप देना युग पुरुष का स्वयमेव दायित्व हो जाता है। व्यक्ति तथा इतिहास इंडिविजुअल एंड हिस्ट्री। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास में व्यक्ति की भूमिका की व्यापक चर्चा की। जेम्स स्टुअर्ट मिल का अभिमत है कि जिस के इतिहास के निर्माता महापुरुष होते हैं, अतः इतिहास अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य अतीतकालिक महापुरुषों की जीवन गाथाओं तथा उपलब्धियों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार मिल की इतिहास संबंधी अवधारणा हेनरी पिरेन की उस कथोक्ति की पुष्टि करता है कि इतिहास समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। वास्तविकता यह है कि इतिहास में उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों और उपलब्धियों को स्थान दिया जाता है जिन्होंने समाज का नेतृत्व धार्मिक सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक आंदोलनों में किया है। सभी युगों में आंदोलनों का प्रादुर्भाव संभव नहीं है। हेगेल ने द्वंद्ववाद का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरातन व्यवस्था तथा नवोदित व्यवस्था के बीच निरंतर संघर्ष होता है। परिणाम स्वरूप दोनों व्यवस्थाओं के पारस्परिक द्वंद्व के परिणाम स्वरूप एक नवीन व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। इतिहास की अनवरत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इतिहास का निर्माण होता रहता है। हेगेल के अनुसार द्वंद्व के अभिनेता महापुरुष ही होते हैं और उन्हीं के द्वारा निरंतर इतिहास का निर्माण होता है। स्पेंगलर तथा एजे टैनबी ने सभ्यता तथा संस्कृति को अपने इतिहास की विषय वस्तु बनाकर गंभीर एवं रहस्यमय गूढ़ विचारों से सुसज्जित किया है। उन लोगों ने हेगेल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्वीकार किया। टैनबी के अनुसार इतिहास निर्माण तथा परिवर्तन चुनौती चैलेंज और प्रक्रिया रिस्पॉन्स से होता है। प्रत्येक युग की सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्था चुनौतियां होती हैं। उनके विरुद्ध प्रतिक्रियाओं का होना स्वाभाविक है। चुनौती तथा प्रतिक्रिया के बीच द्वंद के परिणाम स्वरूप निरंतर सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का होना इतिहास की गतिशीलता का प्रामाणिक तथ्य है। इन क्रांतियों का नेतृत्व कोई महापुरुष ही करता है। यूरोप के इतिहास में यदि मार्टिन लूथर ने धार्मिक अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए पुनर्जागरण का नेतृत्व किया तो उस आंदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया आंदोलन काउंटर रिफॉर्मेशन का उद्भव हेगेल के द्वंद्ववाद की पुष्टि करता है। इसी प्रकार मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन तथा सूफीवादी आंदोलनों का प्रादुर्भाव और इतिहास और विकास का एकमात्र अभिप्राय हिंदू तथा इस्लामी समाज सुधार, धार्मिक रूढ़िवादिता एवं बाह्याडंबर को समाप्त करके सामाजिक धार्मिक तथा समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त करना था। भक्ति आंदोलन के क्रांतिकारी कबीर, नानक, चैतन्य तथा रविदास और सूफीवादी संत मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रयास का लाभदायक परिणाम सामने आया। परंतु कुछ समय पश्चात सूफीवादी कादिरी तथा नक्शबंदी संप्रदायों के संतों के प्रतिक्रियावादी आंदोलनों ने इस्लामी रूढ़िवादिता को रूढ़िवादिता की पुनर्स्थापना में अद्भुत सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास, वल्लभाचार्य आदि संतों ने रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी आंदोलन का नेतृत्व करके सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़िवादिता और मूर्ति पूजा की पुनर्स्थापना की। यह टैनबी की चुनौती, चैलेंज तथा प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स एवं क्रियाशीलता सिद्धांत की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। इतिहास की इस गतिशीलता में आंदोलनों का नेतृत्व महापुरुष ही करते हैं। युग नाड़ी का ज्ञान। अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान युग की नाड़ी का ज्ञान महापुरुषों के लिए अत्यावश्यक होता है। इस ज्ञान के अभाव में कोई भी महापुरुष इतिहास में सफल नहीं हो पाया है। फ्रांस में 1789, 1830 तथा 1848 की क्रांतियों का प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन सम्राट युग नाड़ी के ज्ञान के अभाव में जनमानस की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान नहीं कर सके। उसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की असफलताओं में युग नाड़ी के ज्ञान के अभाव की प्रमुख भूमिका रही है। मेवाड़ के राणा प्रताप जीवन पर्यंत मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे, परंतु युग नाड़ी को पहचान न सके। संपूर्ण राजस्थान के शासकों ने न केवल अकबर महान की अधीनता को स्वीकार किया, बल्कि अपनी राजकुमारियों से मुगल राजभवन को अलंकृत किया था। इसी प्रकार मराठा सम्राट शिवजी ने हिंदू पद पातशाही का उद्घोष किया, परंतु तत्कालीन हिंदू राजाओं के कान तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण किसी महापुरुष के नेतृत्व तथा युग नाड़ी के ज्ञान का अभाव था। इतिहास में युग पुरुष की भूमिका, रोल ऑफ ग्रेट मैन इन हिस्ट्री। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म की औन्नति तथा अधर्म के उत्थान के संदर्भ में सन भवामी युगे युगे। श्री कृष्ण की यह उद्घोषणा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि युग पुरुष का आविर्भाव शताब्दियों पश्चात कभी कभी ही होता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध का आविर्भाव धार्मिक दशा सामाजिक क्रांति द्वारा जनमानस की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ही हुआ था। डॉक्टर गोखले का अभिमत है कि छठी सदी ईसा पूर्व काल में कुछ उपनिषदों का संकलन किया जा रहा था, उसे बौद्धिक उत्तेजना का युग कहा जा सकता है। सर्वत्र संकायें व्याप्त थी, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में क्रांतिकारी विचार आंदोलित हो रहे थे। समसामयिक समाज में ब्राह्मणों का नैतिक पतन, धार्मिक जटिलता, यज्ञ, क्लिष्ट धार्मिक साहित्य, वर्ण व्यवस्था, चतुर्दिक सामाजिक असंतोष एक ऐसे क्रांतिकारी युग पुरुष के आविर्भाव की प्रतीक्षा में था जो क्षुब्ध जनमानस की तृष्णा को संतृप्त कर उनकी आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सके। युग पुरुष महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव इसी सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शासक शुद्धोदन के राजमहल में हुआ था। उनकी मां माया की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद हो गया, अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। जीवन की सामान्य घटनाओं को देख कर उनका हृदय इतना क्षुब्ध हो गया कि राजमहल के वैभव, पत्नी तथा पुत्र राहुल का परित्याग कर जनमानस के कष्ट निवारण हेतु राजमहल त्याग तपस्या के लिए निकल पड़े। कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तथा उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। अतीत के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक समाज की नाड़ी ज्ञान की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अत्यंत सरल तथा सुलभ मार्ग प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म का प्रतिपादन का उद्देश्य की प्राप्ति का सरलतम साधन है। मोनियर विलियम्स के अनुसार महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चरित्र का प्रभाव तथा उनकी शिक्षाओं की उत्प्रेरकता इतनी प्रबल तथा ग्राह्य थी कि शीघ्र ही उसका प्रसार श्रीलंका तथा अफगानिस्तान तक हो गया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव प्रत्येक घर, कृषकों की झोपड़ियों तथा राजमहलों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने न केवल सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया बल्कि मानव आत्मा की स्वतंत्रता तथा मोक्ष का सरल साधन प्रस्तुत किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार महात्मा बुद्ध ने कभी यह अनुभव नहीं किया कि वे नवीन धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदू के रूप में जन्म लिया और हिंदू की भांति अपनी जीवन लीला समाप्त की। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में प्राचीन आदर्शों मात्र पर अधिक बल दिया तथा उनका वर्णन किया। निस्संदेह महात्मा बुद्ध ने युग पुरुष के रूप में जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति की। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथा समाज सुधारक के रूप में इतिहास युग युग तक स्मरण करेगा। वर्धमान महावीर की भी गणना युग पुरुष के रूप में की जाती है। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंड ग्राम के राजा थे। लिच्छवी राजकुमार त्रिशला इनकी माँ थी। युवावस्था में इनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ था। पुत्री प्रियदर्शनी के जन्म के पश्चात 30 वर्ष की आयु में राजमहल के वैभव का परित्याग कर तपस्या के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तप के पश्चात ऋजुपालिक नदी के तट पर उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक ही नहीं अभी तो सुधारक माने जाते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में गुप्त शक्तियां होती हैं। उनका पूर्ण विकास करके व्यक्ति स्वयं परमात्मा बन सकता है। महावीर स्वामी ने अनिश्वरवाद, निवृत्ति मार्ग, कर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में आस्था, निर्वाण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा अहिंसा का प्रचार किया। युग पुरुष न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्वानुमान तथा पूर्वाभास करता है बल्कि उच्च शिखर पर आसीन होकर घटनाओं के संबंध में उद्घोषणा भी करता है। ऐसे युग पुरुषों के अभाव में घटना संबंधी प्रकाश जनमानस तक नहीं पहुंच सकता। पैगंबर मोहम्मद युग पुरुष तथा देवदूत थे। बिखरी अरबी जाति को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस्लाम धर्म का प्रवर्तक बनकर एक विशिष्ट धर्म चलाया। अल्लाह सृष्टि का करता है, उसकी सृष्टि से बचकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आकाशीय नक्षत्रगण जिस प्रकार पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार अभी परिभ्रमण करते हैं उसी प्रकार न्याय संयुक्त व्यवस्था मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, परंतु मनुष्य को सामाजिक संगठन बनाने के लिए कार्य करना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कृति है। इस्लामी अवधारणा के अनुसार इतिहास प्रकाशपुंज तथा अंधकार की गहनता के बीच अनवरत संघर्ष श्रृंखला है। यह स्वर्ग तथा नर्क, पुण्य पाप, फरिश्ता शैतान के बीच द्वंद्व का प्रतीक है। इस्लामी इतिहास चेतना का उदय 8वीं सदी की देन है। इस्लामी जगत में इसे बौद्धिक पुनर्जागरण का युग माना जाता है। इस्लामी इतिहास तथा नवजागरण को एक नवीन दिशा प्रदान करने का एकमात्र श्रेय ख्याति लब्ध इतिहासकार इब्न खल्दून को है। गातिये ने उनके युग को इतिहास का सहारा कहा है। पैगंबर मोहम्मद ने युग पुरुष तथा देवदूत के रूप में समस्त अरब जाति तथा इस्लामी अनुयायियों को सामाजिक धार्मिक एकता के सूत्र में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। भारतीय इतिहास में 13वीं सदी को हिंदू सभ्यता का गहन अंधकार युग कहा जाता है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना तथा उसके संगठन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने दक्षिणी राज्य देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल, होयसल, पांड्य, माबर के स्वतंत्र अस्तित्व को ही समाप्त नहीं किया अपितु अनेक वैष्णवों के केंद्र आदमपुर पर मस्जिद का निर्माण कराकर इस्लाम की विजय पताका फहराई। 1336 में मुस्लिम साम्राज्यवाद के विजयनगर राज्य की स्थापना एक प्रतिक्रिया थी। ऐसे नैराश्य युग में युग पुरुष रामानंद का आविर्भाव दुख संतप्त निराश तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ हिंदू समाज के लिए महा औषधि का कार्य किया। अतीत के संदर्भ में समसामयिक समाज की यथोचित नाड़ी पहचानने वाले रामानंद अद्वितीय समाज धर्म सुधारक तथा युग दृष्टा थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार सच पूछा जाए तो रामानंद मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंतन के एकमात्र गुरु थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रकाश पुंज को प्रज्वलित किया जिसकी अग्नि किरणों ने समस्त उत्तर भारत को अल्प समय में ही आत्मसात कर लिया। मुस्लिम सत्ता के राजनैतिक प्रतिरोध की अब संपूर्ण आशा समाप्त हो गई थी। ऐसे नैराश्य युग में हिंदू समाज में नवीन चेतना तथा भक्ति भावना को जागृत कर सामाजिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति करना चाहते थे। उन्होंने तथाकथित मुस्लिम कबीर को अपना शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया। रैदास चमार, धन्ना जाट किसान, सेना नाई, पीपा राजपूत, भवानंद सुखानंद परमानंद तथा भवानंद आदि पद दलित जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर हिंदू बिखराव को रोकने का प्रशंसनीय प्रयास किया। भगवान राम को अपना आराध्य देव माना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राक्षस विभीषण बंदर जाति के शिरोमणि सुग्रीव अंगद तथा ऋक्षपति जामवंत के भी आराध्य देव थे। हिंदू समाज को एकता के सूत्र बंधन के लिए राम जैसे आराध्य देव की ही आवश्यकता थी। वह युग की आवश्यकता तथा युग पुरुष युग दृष्टा रामानंद की अपरिहार्यता भी थी। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार रामानंद पर्वतीय अजस्र प्रवाहित जलस्रोत के समान थे, जिसमें मधुर आनंद सुख जल कलित होकर प्रवाहित हो रहा था, जो सांसारिक दुख संतृप्त हिंदू साम्राज्य की तृष्णा को शांत करने में सक्षम था। समाज धर्म सुधार संबंधी अनेक प्रकाश पुंज को कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल तथा रविदास ने समाहित कर समस्त उत्तर भारत के कोने कोने में फैलाया। मध्ययुगीन समाज को नवजीवन शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान किया। यदि इतिहास का अर्थ अतीत के आलोक में वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा सुखद एवं सुसंपन्न भविष्य का मार्गदर्शन होता है, तो युग पुरुष एवं युग दृष्टा रामानंद ने अतीत के परिप्रेक्ष्य में भक्ति आंदोलन के माध्यम से समसामयिक समाज की न केवल रक्षा की बल्कि भावी पीढ़ी के महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का मार्गदर्शन किया। इस प्रकार युग पुरुषों की श्रेणी में रामानंद ने गौरवपूर्ण प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। सहस्राब्दी पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वतंत्रता संग्राम 1919 से 1947 में निर्णायक भूमिका ने उन्हें विश्व के युग पुरुषों के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया है। महापुरुष या तो वर्तमान जनमानस की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है या उन शक्तियों का जो वर्तमान शक्ति को चुनौती देता है। महात्मा गांधी ने न केवल अतीत के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक घटनाक्रम का पूर्वाभास एवं पूर्वानुमान किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का कृत संकल्प किया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का कारण किसी महापुरुष के कुशल नेतृत्व का अभाव था। भारतीय समाज के उच्च शिखर पर आसीन होकर महात्मा गांधी ने भावी घटनाओं का पूर्वाभास ही नहीं किया, बल्कि भावी घटनाओं के संबंध में उद्घोषणा भी की। उन्होंने इस तथ्य को अनुभव किया कि युग पुरुष के अभाव में जनमानस तक घटना का प्रकाश संभव नहीं था। जेम्स स्टुअर्ट मिल ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए युग पुरुष की निर्णायक भूमिका अपरिहार्य होती है। डॉक्टर लेविस के अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट तथा बिस्मार्क की महानता का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने अपने पैर पर खड़े न होकर तत्कालीन विद्यमान शक्तियों पर आरूढ़ होकर महानता प्राप्त की। महात्मा गांधी की अभूतपूर्व सफलता का रहस्य भी यही था। उन्होंने भी जनमानस की शक्तियों पर आरूढ़ होकर उनकी स्वतंत्रता संबंधी आकांक्षाओं की पूर्ति का सराहनीय प्रयास किया। 1919 से 1947 के युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। कांग्रेस के अभियानों की राजनीति तथा कौशल का निर्णय गांधी जी करते थे, इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस गांधी थी और गांधी कांग्रेस। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी आकर्षक विशेषताएं थी जो भारतीय जनमानस को मंत्रमुग्ध कर लिया। वे जहाँ भी जाते थे, छोटे से छोटा भारतीय यह अनुभव करने लगता था कि महात्मा गांधी उत्कृष्ट भारत भूमि की सर्वोत्कृष्ट उपज तथा उसी के अस्थि पंजर हैं। जनमानस के बीच जब कभी भी वे स्वतंत्रता की चर्चा करते थे तो उनकी वाणी रामायण तथा श्रीमद भगवत गीता के प्रवचनों से ओतप्रोत रहती थी। स्वराज्य, प्रांतीय स्वतंत्रता अथवा संघ के गुण एवं अवगुणों को न समझकर सदैव रामराज्य की महानता तथा उसके उच्च कोटि के आदर्शों पर सरस भाव से प्रवचन देते थे। सत्य, अहिंसा तथा प्रेम से स्वतंत्रता की प्राप्ति के लक्ष्य की चर्चा करते समय महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी के उपदेशों का स्मरण दिलाने का अवसर कभी भी नहीं खोया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के अवसरों पर जब कभी भी आंदोलन का नेतृत्व किया, लाखों लाखों जनमानस की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी। उनकी एक आवाज पर संपूर्ण भारत के जनमानस की आवाज से आकाश गूंज उठता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात साबरमती के इस महान संत ने सब कुछ त्याग कर संत जीवन का चयन किया। विश्व के इतिहास में इतने बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी अद्वितीय युग पुरुष ही नहीं अपितु सहस्राब्दी पुरुष माने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी युग के महापुरुष थे। विश्व जब दो महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ से विभक्त हो चुका था, विश्व शांति के देवदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। आज राष्ट्र संघ में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का समूह महान शक्ति बन गया है। इस प्रकार पंडित नेहरू एक महापुरुष के साथ महान युग दृष्टा थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषणात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो गया कि इतिहास में महापुरुषों की निर्णायक भूमिका असंदिग्ध है। उनके नेतृत्व के अभाव में कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांतियां सफल नहीं हुई है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता स्वयमेव इसकी पुष्टि करता है। जीसस क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी तथा रामानंद के अभाव में उन धार्मिक आंदोलनों की सफलता संभव नहीं थी। युग दृष्टा उन महापुरुषों ने समाज के उच्च शिखर पर आसीन होकर भावी ऐतिहासिक गतिविधियों का पूर्वाभास एवं पूर्वानुमान किया। उनमें युग की नाड़ी पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। उनके कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप धार्मिक आंदोलनों को सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का एकमात्र श्रेय सहस्राब्दी पुरुष महात्मा गांधी को ही है। घुटने के ऊपर खादी वस्त्र को धारण करने वाला साबरमती के संत के व्यक्तित्व में मंत्रमुग्ध करने वाला क्या आकर्षक सम्मोहन था कि जिस दिशा में निकल पड़े लाखों का जनमानस उनके पीछे चल पड़ा। सत्य तथा अहिंसा द्वारा इतने बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला विश्व इतिहास में आज तक किसी का आविर्भाव नहीं हुआ। लेविस के अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट तथा बिस्मार्क की उच्च कोटि की सफलताओं का एकमात्र कारण यह था कि वे अपने पैर पर खड़े न होकर तत्कालीन विद्यमान जनशक्ति पर सवार होकर महानता के उच्च शिखर पर आसीन हुए थे। इसी प्रकार वैज्ञानिक आंदोलन के क्षेत्र में कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों के योगदान को इतिहास कैसे भूल सकता है। साम्यवादी विचारधारा के इतिहासकार महापुरुषों की भूमिका को अस्वीकार करके जनमानस की सामूहिकता को मान्यता प्रदान करते हैं। अगस्त कोमते का भी यही दृष्टिकोण है, परंतु इतिहास साक्षी है कि लेनिन तथा माओ से तुम के नेतृत्व के अभाव में साम्यवादी आंदोलन की सफलता संभव नहीं होती। प्लेकनो ने भी इतिहास में युग पुरुषों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। यदि जनमानस को युग पुरुष प्रभावित कर सकता है तो इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि वह ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस प्रकार वह इतिहास का निर्माता होता है। महापुरुष भावी घटनाओं को परिपक्वता प्रदान करता है। मोनेट का अभिमत है कि ऐतिहासिक घटनाएं तथा महापुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा उन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। महापुरुष के अभाव में ऐतिहासिक घटनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा ऐतिहासिक घटना के अभाव में महापुरुष व्यर्थ तथा अस्तित्वहीन है। महापुरुषों के सक्रिय योगदान के अभाव में कोई परिवर्तन सक्रिय रूप से गतिशील तथा क्रियाशील नहीं हो सकता है। अतः ऐतिहासिक घटनाओं की सफलता के लिए महापुरुषों का सहयोग एवं नेतृत्व नितांत आवश्यक है। ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान जनमानस शक्ति नहीं अपितु महापुरुष द्वारा ही संभव है, क्योंकि वह दूरदर्शी होता है। तथा समस्या संबंधी गुण तत्वों को समझने की अद्भुत क्षमता रखता है। आचार संहिता के अनुसार इतिहास में महापुरुष वह व्यक्ति होता है जिसने भावी पीढ़ी की सुख संपन्नता के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधाओं का परित्याग करके भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा सुभाष चंद्र बोस ने भावी पीढ़ी के लिए अपने जीवन का बलिदान करके इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया है। इतिहास में महापुरुषों की निर्णायक भूमिका असंदिग्ध है, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि इतिहास का द्वार अन्य व्यक्तियों के लिए बंद रहता है। लेखकों ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास का द्वार उन सभी लोगों के लिए खुला है जिनके पास देखने के लिए नेत्र, सुनने के लिए कान तथा अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम के लिए हृदय हो। इस प्रकार इतिहास का द्वार न केवल महापुरुषों बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, परंतु इतिहास का निर्माण केवल युग पुरुष अथवा महापुरुष ही करते हैं। महापुरुषों के कुशल नेतृत्व के अभाव में आज तक कोई भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रांतियां सफल नहीं हो पाई हैं। अतः महापुरुषों की भूमिका असंदिग्ध है।